हालेलुया। खुदावन में आप सब की सलामती हो आज के दिन के लिए, और आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है ग्रेस बाइबल चर्च आरवाला में। इससे पहले कि हम खुदावन के जिंदगी बख्श कलाम को और उन गहरी सच्चाइयों को सीखें, खुदावन के हजूर झुक जाएंगे और पहला यूहन्ना पहला बाप उसकी नामी आयत के मुताबिक अपनी सारी फिक्रों को, सोचों, ख्यालों को, जो हमारी पुरानी इंसानियत और हमारे मुखालफ की तरफ से है, और उस दुनिया की शिकायत, फिक्रें, बहुत से बुरे ख्यालात हैं, उन सब को एक तरफ रखते हुए सिर्फ और सिर्फ खुदावंद के हजूर अपने आप को खाली कर देंगे और कहेंगे कि हम तेरी हजूरी में आए हैं, हमें अपनी सच्चाई से भर, ताकि जमीन पर सच्चाई के पैंबर बनकर जिंदगी बसर करें। आए हम खुदावंद के हुजूर झुकें। हर एक के लिए दावत है, मौका है। कादर मुतलक खुदा, तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं आज के दिन के लिए जो तूने बख्श दिया कि तेरी हजूरी में बैठें और तेरे बेटे खुदावंद यसु मसीह की उस फतह के लिए जो उसने सलीब पर अपनी जान देकर हर एक ईमानदार को दी है, उस फतह को इस जमीन पर बड़ी खुशी के साथ, दलेरी के साथ मनाने वाले बने। आज जो कुछ भी तेरे जिंदगी बख्श कलाम में से सीखें, हम सब की तरबियत और नसीहत का बायस हो। सिर्फ इलम रखने वाले ना बने, बल्कि अपनी जिंदगियों को आज के कलाम में देखने वाले बने कि हम कहां पर हैं और हमें क्या करने की जरूरत है, ताकि तेरी पहचान में और तेरी मानद इस जमीन पर जिंदगी बसर करने वाले बने। यीशु मसीह के नाम में सुनने वाले तमाम लोगों को बड़ी बरकत दे। ये दुआ अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया। मेरे साथ निकालें नेहनामा में से इफ़सियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका दो बाप उसकी 16वीं आयत से 18वीं आयत तक। आज हम इस आयत को मुकम्मल करेंगे। जैसा कि हमने पिछले दिनों में सीखा है, मेरे साथ निकालें, पहले हम खुदावंद का कलाम पढ़ेंगे। 16वीं आयत में यूं लिखा है, और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर और उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाया, और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो नजदीक थे, दोनों को सुलह की खुशखबरी दी, क्योंकि उसी के वसीला से हम दोनों की एक ही रूह में बाप के पास रसाई होती है। हमने गुजरे अयाम में खुदावंद के कलाम में से सीखा था पाक त्रीन मकान के बारे में, अहद के संदूक के बारे में, उसकी लकड़ी के बारे में और उस सोने के बारे में के, और उस पर बने हुए दो फरिश्तों के बारे में जो करूबी थे, उनका मकसद और मतलब क्या था। सादा लफ्जों में आपको जो याद दहानी के तौर पर, लकड़ी यीशु मसीह की फरोतनी को जाहिर करती है अहद के संदूक में, और सोना खुदावंद यीशु मसीह की अल्लूहियत को, यानी कि उसकी खुदाई को जाहिर करती है, और दो फरिश्ते जो दाएं और बाएं हैं, जो अपने पर फैलाए हुए देख रहे हैं उस खून को जो उसमें उस मर्सी सीट पर यानी के सरपोश पर डाला जाता है। एक फरिश्ता खुदा की रास्तबाजी को और दूसरा खुदावंद के अदल को जाहर करता है। जब खुदा उस खून को देखता था तो खुदा उस कुर्बानी से खुश होता था और उस वक्त के लोगों के गुनाह को मुआफ करता था। और हमने देखा था कि वो सारा अहद का संदूक यीशु मसीह के उस मुकम्मल करदा काम को जो सलीब पर उसने किया है जाहिर करता है, और उसकी वो मुकम्मल कामिल तस्वीर है जो यीशु मसीह ने 2000 साल पहले बनी हुई इंसान के लिए की। और यीशु मसीह बहुत ही बेहतर सरदार काहिन है उस वक्त के काहिन के बजाय, उस वक्त के काहिन के बनिस्बत। यीशु मसीह वो उम्दा मकदस है जो हर वक्त हमारे लिए رفاقت کا باعث ہے، ہر وقت اس کی حضوری میں اس کے ساتھ ہماری رفاقت ہو سکتی ہے۔ اور ہم نے تین باتیں سیکھی تھی من کے بارے میں، من بنی نو انسان نے خدا کی جسمانی برکات کو رد کیا، اور ہارون کے آسا کو یہودیوں نے اور ہر ایک نے خدا کے خلاف سرکشی کی، اور دس احکام ہر ایک نے اس وقت اور آج بھی، کوئی بھی دس احکام پر پورا نہیں اتر سکتا، سب نے دس احکام توڑے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنی اس صلیب کے، اپنی اس جان کے، جان کو صلیب پر دینے کے باعث اس کام کو مکمل کیا، اور جو حکم ضابطوں کے طور پر تھے ان سب کو محفوظ کر کے ہمیں ایک نیا انسان بنا کر صلح کا پیغام دیا۔ اور ہم نے دیکھا تھا اس 18ویں آیت میں، اسی کے وسیلہ یعنی کہ خداوند یسوع مسیح میں ہماری ملاقات خدا باپ سے ہوئی، اور ہم دونوں یعنی کہ ہر ایک قوم کے انسان کی خدا تک رسائی ہوئی، اور صرف روح القدس کے وسیلہ سے۔ آج ہم سیکھیں گے روح القدس کے بارے میں، یعنی کہ روح القدس کے بپتسمے کے بارے میں جو ایمانداروں کو حاصل ہوتا ہے جب وہ یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں۔ پہلی بات، پرانے عہد نامہ میں جب ہم روح القدس کے بارے میں سٹڈی کرتے ہیں، اس کے بپتسمے کے بارے میں سٹڈی کرتے ہیں یعنی کہ مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں پرانے عہد نامہ میں روح القدس کے بپتسمے کے بارے میں کوئی بھی تعلیم اور نشان نہیں ملتا۔ یہ روح القدس کا بپتسمہ اس موجودہ کلیسیا یعنی کہ یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد بنی نو انسان کو، ایمانداروں کو یہ بڑا شرف حاصل ہوا کہ خدا ان کے اندر روح القدس کی وسیلہ سے، اس کے بپتسمے سے سکونت کرتا ہے۔ اور 18ویں آیت میں ہمیں پوری تسلیس نظر آتی ہے ایمانداروں کے اندر، اور یہ اتفاق سے نہیں بلکہ خدا کے اس انتظام سے ہے جو اس نے پیشتر سے بنایا۔ اور یہ ہمارے سردار کاہن خداوند یسوع مسیح کے اس عظیم کام سے ہے جو اس نے کیا۔ دوسری بات، یسوع مسیح نے روح القدس کے بپتسمے کے بارے میں نبوت کی تھی جب وہ اپنی زمینی خدمت میں تھا، اور جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو 40 دن تک اپنے شاگردوں کو نظر آتا رہا۔ میرے ساتھ حوالہ دیکھیں، یوحنا 14 باب اس کی 20ویں آیت میں یسوع مسیح اس سچائی کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ وہاں پر لکھا ہے، اس روز تم جانو گے کہ میں اپنے باپ میں ہوں اور تم مجھ میں اور میں تم میں ہوں۔ یہاں پر روح القدس، خدا باپ اور یسوع مسیح پوری تسلیس ایمانداروں میں، اس وقت کے شاگردوں میں اور آج کے شاگردوں میں، ایمانداروں میں سکونت کرتی ہے۔ اور اس کی یسوع مسیح نے نبوت کے طور پر جو بات کی ہے وہ صاف طور پر ایمال 1 باب اس کی 5ویں آیت میں ذکر ملتا ہے، اور وہاں پر لکھا ہے، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ یہاں سے روح القدس کی خدمت شروع ہوتی ہے، اور تسلیس مکمل طور پر بنی نو انسان میں سکونت کرتی ہے۔ اور یہ یسوع مسیح کے اس عظیم کام کے باعث ہوا، اس سردار کاہن یسوع مسیح کے باعث جو پاک ترین مقام میں داخل ہوا۔ اور پاک ترین مقام اس بات کو ظاہر کرتا ہے، آسمانی ماحول یا آسمان کو، پاک ترین مقام آسمان کو ظاہر کرتا ہے، جہاں پر پرانے عہد نامہ میں اس وقت کے کاہن جاتے تھے اور خدا سے روبرو بات کرتے تھے۔ آج ہمیں ہر وقت یہ شرف اور یہ استحقاق حاصل ہے کہ ہم آسمانی ماحول میں اپنے خداوند کے ساتھ، اس نے ہمیں شاہی کاہنوں کا فرقہ بنایا ہے تاکہ اس کے ساتھ ہماری क्या हो बातचीत हो। और ये रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा उसने हर एक ईमानदार के लिए ठहराया है, और ये बड़ा ही इस्तेहकाक है, और ये खुदावन का वो बड़ा फजल है। इसके बारे में बहुत सी बातें हैं, लेकिन आज मैं आपको और कुछ सिखाना चाहता हूं। रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा जब हम ईमान लाते हैं तो वो ईमानदारों के अंदर सुकूनत करता है। इसके बहुत से हवाला जात हैं, आप हवाला जात नोट कर सकते हैं। पहला करंथियों 12वां बाप उसकी 13वीं आयत के मुताबिक, वो हर एक के अंदर सुकूनत करता है जब ईमानदार उस पर ईमान लाते हैं और उन्हें रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा मिलता है। और इसी तरह चौथी बात, इफिसियों 4:5 आयत में, एक ही बदन है, एक ही रूह है, और हमें उम्मीद भी एक ही है। और इसी तरह हमें रूहुल कुद्दस का ये बपतिस्मा जब हम गलतियों 3:3 उसकी 26वीं आयत से 28वीं आयत तक को देखते हैं तो वहां पर हमें क्या ठहराता है, क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से 26वीं आयत में जो मसीह यसु में है खुदा के फर्जंद हो, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया मसीह को पहन लिया, मसीह को पहन लिया, मसीह के साथ हमारी रफाकत और शराकत खुदा के रूहुल कुद्दस के वसीला से ठहरती है। इसीलिए हर वक्त जब भी हम खुदावंद की हजूरी में आए, जरूरत है अपने आप को देखने की, क्या हम खुदावंद की रफाकत में हैं, क्या हम गुनाह में जिंदगी तो नहीं गुजार रहे। इसलिए हमें हर वक्त अपने आप को ध्यान करने की जरूरत है कि हम उसकी रफाकत में हैं या नहीं। और ये बड़ा ही इस्तेहकाक है, और इसमें कोई भी ना कोई गुलाम है, ना छोटा है, ना बड़ा है, सबको ये बड़ा एजाज हासिल है, ये बरकत हासिल है। आज हम देखेंगे कि सच्ची प्रस्तश, सच्ची अकीदत बाइबल मुकद्दस में किस तरह की हमसे खुदावन खुदा चाहता है। मेरे साथ एक हवाला निकालें कि ईमानदारों के लिए कैसी प्रस्तश और अकीदत उनका खुदावन खुदा चाहता है कि करें। क्योंकि जब यूहन्ना की अंजील को हम देखते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है 4 में कि बाप ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो उसकी प्रस्तश रूह और सच्चाई से करें, यानी कि रूह से मामूर होकर, रूह से मामूर होते जाओ, हर रोज रूह से मामूर होकर उसकी प्रस्तश करनी है, क्योंकि खुदा रूह है और जरूर है कि उसके प्रस्ताव उसकी प्रस्तश रूह और सच्चाई से करें। मेरे साथ हवाला निकालें नए अहदनामा में से लूका की अंजील, उसका 10:38 आयत से 42वीं आयत तक आपके लिए पढ़ूंगा। और यहां पर यूं लिखा है, फिर जब जा रहे थे तो एक गांव में दाखिल हुए और मार्था नाम एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा, और मरियम नाम उसकी एक बहन थी, वो यीशु के पांव के पास बैठकर उसका कलाम सुन रही थी। लेकिन मार्था खिदमत करते करते घबरा गई, पस उसके पास आकर कहने लगी, ऐ खुदावन, क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है? पस उसे फरमा कि मेरी मदद करे। खुदावन ने जवाब में उससे कहा, मार्था मार्था, तू तो बहुत सी चीजों की फिक्र व तदर्द में है, लेकिन एक चीज जरूर है, और मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। आज इस हवाला में हम इन दो बहनों की कहानी में, छोटी सी कहानी में देखेंगे कि सच्ची प्रस्तश क्या है। सच्ची प्रस्तश दिल से होती है और रूह और सच्चाई से है, और ये मसीही जिंदगी का हिस्सा है। प्रस्तश से मुराद सिर्फ गीत गाना, जबूर गाना नहीं, बल्कि खुदावंद की अकीदत करना ये ही हमारी मकूल इबादत है, यानी कि अपनी जिंदगी उसकी नजर करके गुजारना ये सच्ची मसीही जिंदगी की प्रस्तुति और अकीदत है। और इसीलिए बाइबल हर एक एलची को, एम्बेसिडर को, यानी कि हर एक मसीही मुसाफर को चाहती है कि वो इसी में मसरूफ रहे और खुशखबरी का पैगाम उन खोए हुए लोगों तक, उन खोई हुई जानों तक पहुंचाएं, ताकि खुदा का वो रहम और वो फजल उनको हासिल हो, ताकि वो उस सच्चाई को सीखने वाले और देखने वाले बने और जाने कि खुदा रहम दिल वयूर खुदा है। और यही ईमानदारों को, मसीही मुसाफरों को करने की जरूरत है इस जमीन पर। हम खुदा के बेटे और बेटियां होते हुए इस जमीन पर आगे चलकर हम इफ़सियों के खत में देखेंगे 19वीं से 22वीं आयत तक कि हम जो मुसाफर हैं इस जमीन पर मुसाफराना जिंदगी गुजार रहे हैं, और मुसाफराना जिंदगी गुजारना किसके लिए है, और इसके लिए शख्सी और हकीकी प्रस्तुति बहुत जरूरी है। जब हम मार्था और मरियम को देखते हैं तो मरियम बाइबल मुकद्दस में इसको रिकॉर्ड के तौर पर उसके तीन हवाला जात मिलते हैं, और उन तीन हवाला जात में मरियम यीशु मसीह के कदमों में ही नजर आती है। लूका 10 बाब 39 आयत में, यूहन्ना 11 बाब 32वीं आयत में, और यूहन्ना 12 बाब 3 आयत में। यहां पर इन तमाम हवालों में मरियम सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के कदमों में नजर आती है, जो इस हालत को बयान करती है जो हम सीख रहे हैं, सिट, बैठना, उसके पांव के पास बैठी है सीखने के लिए, सच्ची अकीदत के लिए, उसकी सच्ची प्रस्तुति के लिए और उसे जानने के लिए। और लूका 10 बाब 38वीं आयत से हम देखते हैं तो 40वीं आयत में हमें पता चलता है कि मार्था ने यीशु मसीह को अपने घर में उतारा, उसे अपने घर में उतारा, उसे अच्छी इज्जत दी, लेकिन उसके बाद उसे नजरअंदाज करते हुए मार्था खिदमत करते करते क्या कर रही है, घबरा गई है। मार्था सब्जी काटने में, बहुत सी डिशों को तैयार करने में लगी हुई है ताकि खुदावंद को खुश करे, लेकिन खुदा का जो सच्चा कलाम, जो उसकी सही खुराक है, जो ईमानदारों के लिए जरूरी है, वो खुराक यीशु मसीह है। यीशु मसीह इस हवाला में मार्था को सिखाना चाहता है उसकी बहन की जिंदगी से कि मार्था मार्था सुन, तू बहुत सी चीजों की फिक्र में है, तू बहुत सी चीजें तैयार कर रही है, तूने मेरे लिए बहुत सी इज्जत, अपनी मोहब्बत दिखाई है, मुझे इज्जत की दी है, अपने घर में उतारा है, लेकिन जो कुछ मैं तुझसे चाहता हूं तू उसे नहीं कर रही। और यीशु मसीह ने 41वीं आयत में क्या कहा है, 42वीं आयत में मार्था से बात करते हुए कि तेरी बहन मरियम ने, लेकिन एक चीज जरूर है, और मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। ये अच्छा हिस्सा क्या है, मरियम ने कौन सी खुराक चुन ली थी अपनी जिंदगी में, वो ये थी यूहन्ना पहला बाप उसकी पहली आयत में इस खुराक के बारे में पता चलता है, इस अच्छे हिस्से के बारे में पता चलता है। और ये हिस्सा क्या था, इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। उसने उस जिंदा कलाम को चुन लिया और अपने आप को फरोतन बनाकर उसके सामने पेश कर दिया और उसके कदमों में नजर आती है। ये वो जिंदा कलाम है जो इब्तदा ही से है, और यहां पर वो जिंदा कलाम बोलता हुआ जिस्म में है। और हमने देखा था कि हमने उसका ऐसा जलाल देखा, ये वो जलाल है, ये वो कलाम है जो मरियम और मार्था से बातें कर रहा है, और मरियम ने अपने लिए अच्छा हिस्सा चुन लिया, लेकिन मार्था सिर्फ कामों में मसरूफ है, कामों में लगी हुई है। मार्था के नाम का मतलब जब देखते हैं तो क्या है, मुकद्दस औरत, लेकिन मरियम का नाम का जब मतलब देखते हैं तो रिबेलियस यानी के नाफरमान, सरकश, इसे दूसरे लफ्जों में कहा गया है ओवरकमर यानी के गालब आने वाली औरत, जो अपनी कमियों कमजोरियों पर गालब आ गई हो। ये वो मरियम थी जिसने खुदावंद यसु मसीह के कदमों पर अतर को डाला और इस बात को बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं जब 12वें बाप में जब यसु मसीह ने लाजर को मुर्दों में से जिंदा कर दिया तो मरियम ने जट्टा मासी का आधा सेर खालस और बेशकीमती अतर लेकर यसु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पूंछे और घर अतर की खुशबू से महक गया। ये घर सिर्फ उसका घर ही नहीं बल्कि उसकी जिंदगी यसु मसीह के उस कलाम से कसरत से महक रही थी। शगिर्द जो यसु मसीह के साथ हर वक्त रहते थे वो इस भेद को जान ना पाए, लेकिन यसु मसीह की इस शगिर्दा ने, इस मानने वाली ने, सच्ची अकीदत करने वाली मरियम ने ये अतर डाला और इस बात को जाहिर किया। और यसु मसीह ने इस बात को जाहिर किया है कि उसने नबूवती तौर पर यसु मसीह के कफन और दफन के लिए ये सब कुछ किया। जब यहूदा इस्करियोती ने कहा ये कीमती अतर है, 7वीं आयत में देखे यूहन्ना 12 बाप, पस यसु ने कहा उसे ये अतर मेरे दफन के दिन के लिए रख देना। क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा मेरे पास हैं, तुम्हारे पास हैं, लेकिन मैं तुम्हारे पास ना रहूंगा। यहां पर जब उसे झिड़कते हुए नजर आते हैं तो यसु मसीह की वो उस मौत को जाहिर करती है कि वो सलीब पर जान देने के लिए जा रहा है। लेकिन हम जो यहां पर सच्ची अकीदत को सीख रहे हैं वो ये है कि मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उसे छीना ना जाएगा। आज बहुत से ईमानदार, ये गलत नहीं कि हम यसु मसीह के लिए अपना घर खोलें, अपना दिल खोलें, उसे अपने दिल में उतारें, लेकिन उसके बाद अगर नजरअंदाज कर दें तो ऐसी अकीदत और परस्तश कुछ मायने नहीं रखती। और मार्था की जिंदगी में भी यही नजर आता है। उसने बड़ी इज्जत दी, बड़ी शोहरत दी, बहुत सी चीजें उसके लिए तैयार की, लेकिन उसका दिल सिर्फ और सिर्फ उसे खुश करने में है। लेकिन जो सच्चा और हकीकी हिस्सा था वो उसने खो दिया, और वो ये था कि खुदावंद के साथ रफाकत रखना, जो कलाम जिंदा होकर जमीन पर आया है उसके साथ उसकी रफाकत होना जरूर है। और बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि यसु मसीह उससे कहता है मार्था मार्था। जब हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं तो हमें तकरीबन 2 और 3 हवाला जात मिलते हैं जहां पर यसु मसीह दोबारा लोगों को पुकारता है। एक जगह पर जब सौल को देखते हैं, जो आज के दौर में जिसे हम जानते हैं कि पालूस है, उसे यसु मसीह ने कहा सौल सौल, और यहां पर कहा है मार्था मार्था। इसके पीछे जब सच्चाई को देखते हैं तो इसके पीछे ये हकीकत है कि मार्था मार्था यसु मसीह का वो रहम है, वो फजल है, वो मोहब्बत है। मार्था सुन, रुक, तू नहीं जानती कि तू क्या कह रही है, मैं तुझे बताता हूं। बेशक यू परेशान है, तू घबराई हुई है, तू थक गई है, तू अकेली है, और मैं तुझे बताता हूं कि तू ने बहुत सी चीजें तैयार की हैं मेरे लिए, मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं। मैं चाहता हूं कि जैसे तेरी बहन ने अच्छा हिस्सा चुन लिया है, तू भी ऐसा ही चुनाव कर, ऐसा ही चुनाव कर जो चुनाव तुझसे छीना ना जाएगा। और यीशु मसीह ने क्या कहा है, यूहन्ना 15 बाब उसकी 5वीं आयत में मेरे साथ निकालें, यूहन्ना 15 बाब उसकी 5वीं आयत में, मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम डालियों हो, तुम डालियां हो, जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत सा फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यहां पर यीशु मसीह चाहता है कि मार्था अच्छे हिस्से के बारे में सोचे, क्योंकि वो उससे जुदा अदर रूम में है, और इसी तरह वो रूहानी तौर पर जो खुराक उसे चाहिए, जो सच्चाई उसे जानने की जरूरत है, उससे वो नावाकिफ है, वो सिर्फ खुश है और सिर्फ खाना बनाने में लगी हुई है। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि मैं वो अंगूर का हकीकी दरख्त हूं, तुम डालियां, हर एक ईमान डालियां हैं, हर एक ईमानदार क्या है, हर एक ईमानदार डालियां हैं, और जो मुझ में कायम है, और जो यीशु मसीह में, यीशु मसीह उसे सिखाना चाहता है कि अगर तू मेरे कदमों में रहेगी, तू अच्छे हिस्से को चुन, अच्छे हिस्से को चुन, तो मैं तुझ में कायम रहूंगा, तब ही तू बहुत सा फल लाएगी, क्योंकि तू मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकती, तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। ये हर एक ईमानदार के लिए है। जब हम ईमानदारों को देखते हैं अपने मौजूदा माहौल में, बड़ी ही अकीदत खुदावन के लिए करते हैं, बहुत सी कुर्बानी देने के लिए दिलेरी के साथ बहुत सी अच्छी बातें खुदावन के लिए करते हैं, बेशक ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हम उसमें कायम नहीं, अगर जो जिंदगी का, जो के जिंदगी का दरख्त खुदावन यीशु मसीह है, उससे हमें वो कुदरत, वो ताकत, वो इत्मीनान हासिल नहीं होता, उसे बगैर जाने हुए हम सूख जाते हैं, सड़ जाते हैं। यहां पर यह हवाला अब्दी हलाकत के लिए नहीं, बल्कि जब यीशु मसीह से जुदा होंगे तो हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ दुखों और मुसीबतों की होगी, उसमें कोई खुशी नहीं होगी, क्योंकि सच्चाई हमारे अंदर ना होगी। यीशु मसीह चाहता है कि मार्था इस बात को जाने कि मत्ती 4 बाप उसकी 4 आयत के मुताबिक कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर वो बात जो खुदा के मुंह से निकलती है। और यीशु मसीह उस वक्त जब वहां पर तालीम दे रहा है, वो कलाम है जो इब्तिदा में था, वो खुदा उस वक्त बोल रहा है और चाहता है कि मैं रोटी के लिए भूखा नहीं हूं, और ना ही मैं इस बात पर तेरा ध्यान दिलाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि हर वो बात जो मेरे मुंह से निकलती है वो इस रोटी से कहीं कहीं ज्यादा अफजल है। और वो चाहता है, यीशु मसीह चाहता है कि उसका ध्यान इस बात पर आए, और यीशु मसीह ने इसीलिए कहा मार्था मार्था, यानी कि बड़ी रहम दिली से, इसके पीछे खुदा का बड़ा तर्स है, खुदा का तर्स है, और खुदा का बड़ा ही गहरा प्यार नजर आता है कि जब कहता है कि मार्था मार्था, इसका मतलब है सुन, मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूं, और वो चीज क्या है कि तू चीजों की फिक्र में है, लेकिन मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। आज हमें अपनी जिंदगी में देखने की जरूरत है कि हमने कौन सा हिस्सा अपनी जिंदगियों में चुना है। क्या सिर्फ हम एक दिन चर्च जाकर और दायकी देकर और कुछ और काम देख कर और पादरियों को अपने घर में उतार कर या उनकी इज्जत फजाई करके या सलाम करके ये سوچتے ہیں کہ ہم نے کوئی بڑا کام کر لیا، نہیں، بے شک یہ تمام عزت کی باتیں ہیں، لیکن ضروری حصہ ہے، اس ضروری حصے کو چننے کی ضرورت ہے جو زندہ کلام خداوند یسوع مسیح ہے، تاکہ اس کے ساتھ ہماری رفاقت اور شراکت ہو. ہماری ہر روز اس کے ساتھ رفاقت شراکت ہونا ضرور ہے. اور مکاشفہ کی کتاب میں ہمیں ذکر ملتا ہے، دوسرا باپ اس کی تقریباً، میرے ساتھ دیکھیں، دوسرا باپ، سوری، پہلا باپ تقریباً اس کی ہمیں ملتا ہے ذکر کہ دیکھ میں دروازے پہ کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، جو کوئی میرے لیے دروازہ کھولے گا میں اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا. یہ ہمیں مکاشفہ 3 باب اس کی 20ویں آیت میں ذکر ملتا ہے. اسی طرح ہر روز وہ آپ کے دلوں کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تاکہ آپ کے ساتھ رفاقت ہو. یہ وہی خدا ہے جس نے عہد کا صندوق بنانے کے لیے کہا اور کہا کہ میں تم سے وہاں پر ملا کروں گا. آج آپ جو روح القدس کا مقدس ہو، آج آپ جو اس کی رہائش گاہ ہو اور آپ میں وہ رہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ رفاقت ہو. اور یہ رفاقت صرف اور صرف اس کے کلام کے باعثوں کی، جو ابتدا میں تھا، جو ہے اور جو رہے گا اور جو زندہ ہمارے سامنے موجود ہے. اور اس نے کہا کہ دیکھ میں دروازے پہ کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ. کیا اس آیت کا مطلب ہے؟ یسوع مسیح ہمارے ساتھ رفاقت رکھنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کے بارے میں سیکھیں تاکہ اس کے نام کو جلال ملے. وہ چاہتا ہے کہ ہم اس دلہے کو کیا مقام دیا ہے. اور ہم سیکھ رہے ہیں افسیوں 2 باب اس کی 18ویں آیت، اسی کے وسیلہ سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوئی ہے. کیا ہم اس پہچان کا، اس محبت کا جو اس نے کی ہے، اسے حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں؟ آئے ہم خداوند کے حضور جھکیں. آسمانی باپ، اس کلام کے وسیلہ سے سننے والوں کو بڑی برکت دے اور سب کو خداوند یہ حکمت اور دنائی دے کہ اپنی زندگی میں اچھا حصہ چنے جو تیرا کلام ہے. کیونکہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر وہ بات جو تیرے منہ سے نکلتی ہے. کیونکہ کلام ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا تیرے کلام میں سے جو یسوع مسیح کا سچا کلام ہے. سب کو بڑی برکت دے یسوع مسیح کے نام میں، آمین.